शांति। एक बार हम सभी मिलकर के उस रीति से ओम शांति बोलेंगे जैसा कि यज्ञ के आदि में ब्रह्मा बाबा के साथ साथ सभी ब्राह्मण वत्स मिलकर के बोला करते थे, ओम की ध्वनि का उच्चारण करते थे। अंदर गहरी श्वास लेंगे और उस श्वास को निकालते हुए ओम की ध्वनि करेंगे, फिर दूसरा गहरा श्वास लेंगे और उसे निकालते हुए शांति की ध्वनि करेंगे। शांति की मधुर ध्वनि ही है जिसके स्वरूप में स्थित होने से हम सहज ही प्रकृति जीत सोमाया जीत बन जाते हैं। प्रकृति जीत से भाव है, हम सबके सामने जो रोल मॉडल है प्रकृति जीत का, कौन है रोल मॉडल प्रकृति जीत का? ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा तो अव्यक्त हो गए, दादी जानकी जी। कैसे हैं प्रकृति जीत? वो उसकी कहानी जानते हैं? दिसंबर 1999 की बात है, पिछली शताब्दी का मतलब अंतिम दिन, और 31 दिसंबर आप सबको मालूम है 31 दिसंबर को बाप दादा की पधरामणि यहाँ पर होती है। तो उस समय दादी जानकी की तबीयत बहुत खराब थी और वो लोटस अहमदाबाद में थे और बहुत ही खराब, डॉक्टरों ने भी जैसे जवाब दे दिया था, और इस रीति से वो बहुत ही शरीर जैसे कि ऐसा लग रहा था, डॉक्टर वगैरह भी बोल रहे थे कि कुछ अभी तो कहा नहीं जा सकता। तो यहाँ पर वही बात दादी प्रकाशमणि जी ने और निर्वैर भाई जी ने बाबा को सुनाई। 31 दिसंबर को बाबा आते हैं, तो बाबा को जब वो बात सुनाई गई तो बाबा ने कहा कि बच्चे कोई बात नहीं है, वो आत्मा तो प्रकृति जीत है और ठीक हो जाएगी। और देखो आज उस बात को 19 साल बीत गया। कितना? 19 वर्ष। और 19 वर्ष कैसे दादी जी ने इतनी अथक सेवा करते हुए निकाल दिए, पूरे विश्व का भ्रमण करते हुए भी हम सबके सामने वो रोल मॉडल है, सैंपल है। और प्रकृति का मतलब ही है, हाँ? दो मतलब है प्रकृति के, एक है प्रकृति अर्थात ये पांच तत्व बाहर के, जल अग्नि वायु पृथ्वी आकाश, और उनसे बना हुआ हमारा ये शरीर, ये प्रकृति। और दूसरा प्रकृति का मतलब हमारा स्वभाव, ह्यूमन नेचर। प्रकृति को नेचर कहते हैं, तो नेचर के दो अर्थ हैं। हम कह देते हैं साधारणतः भाई मेरी नेचर ऐसी है, मेरा बोल ऐसा है। और बाहर की नेचर, फाइव एलिमेंट्स ऑफ नेचर, पांच तत्व जो है, तो इन पर कैसे विजय प्राप्त करें, इस पर बाप दादा ने बहुत गुह्य प्रकाश डाला हुआ है। क्योंकि जो ये नेचर है प्रकृति, तो अंदर की जो नेचर है हमारा स्वभाव, यानी उसके अंदर तो हमारा सारा पुरुषार्थ आ जाता है। पुराने संस्कारों को बदलना, हमारे मन वाणी कर्म जो बाबा कहते हैं, संबंध, सब चीजों पर जैसे उससे हम विजय प्राप्त करते हैं। यही तो हमारा पुरुषार्थ है, अमृत वेले से लेकर, योग से लेकर सारे दिन की दिनचर्या, ज्ञान योग धारणा सेवा, जो भी चार विषय हैं, उन सब के पीछे भाव यही है कि हमारे पुराना जीवन अब वो हमारा नहीं रहा, अब हमारा नया जीवन हो गया, उसी के लिए हम सारा पुरुषार्थ करते हैं। तो वो तो सबको मालूम ही है। तो एक तो उस रीति से हम प्रकृति जीत बन रहे हैं, क्योंकि उसमें भी मुख्य जो सबसे बड़ी बात है वो है मन की बात। इसीलिए कहा है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन जीते जगत जीत, माया जीते जगत जीत। ये भी कहा है मन चंगा तो कठौती में गंगा। यानी मन के ऊपर बहुत आधार है, और मन अर्थात हमारी संकल्प शक्ति। तो इसीलिए बाबा ने संकल्प शक्ति को एक मुख्य खजाना बताया है। संकल्प और समय जो मुख्य खजाने हैं, वैसे तो बहुत खजाने हैं, लेकिन ये दो मुख्य खजाने हैं। तो इनके आधार पर हम प्रकृति, जो हमारी आंतरिक प्रकृति है, उस पर विजय प्राप्त करते जा रहे हैं। लेकिन जो बाहरी प्रकृति है, ये पांच तत्व हैं, इनके ऊपर किस तरीके से हम जो विजय प्राप्त करें, क्योंकि हमारा जो भी पुरुषार्थ हो रहा है वो एक उस घड़ी के लिए हो रहा है। किस घड़ी के लिए? जब हमारे प्राण इस तन से निकलेंगे, जब हमारा अंतिम समय होगा, उसके ही लिए हमारा सारा पुरुषार्थ चल रहा है। और गायन है अंत मते सोगति का गायन। इसलिए अंत में शरीर छोड़ते समय हमारी कैसी स्थिति है, उसके आधार पर ही हमारा अगला जन्म, और केवल एक जन्म ही नहीं बल्कि जन्म जन्मांतर तक पूरा कल्प के ही लगभग सभी जन्मों का आधार हमारा ये संगमयुगी जन्म है। और इसका भी वो अंतिम क्षण जब आत्मा इस शरीर से विदा लेती है। तो इसीलिए उसको हम सफल कैसे बनाएं कि हमारे पूरा कल्प के सारे जन्म सफल हो जाए, उस बात पर भी विचार करना आवश्यक है। तो पुरुषार्थ तो हम सब कर ही रहे हैं, वो है ही, लेकिन अंत मते सो गति के आधार पर बाबा ने कहा है, जैसा जितना लंबा समय तक पुरुषार्थ होगा जिसका, उतना लंबा समय तक ही वो सतयुग में और आगे आने वाले जन्मों में राज्य करेगा। और जितना लंबा समय तक यहाँ पर हमने पुरुषार्थ में अपने सफलता प्राप्त की होगी, उसके आधार पर ही न केवल अगले जन्म ही होंगे, बल्कि सारे संबंध, सुख, शांति, शक्ति, जितना धन धान्य है, सब कुछ उस पर ही आधारित है। इसीलिए अंतमति सुगति का जो गायन है, उसको समझना यथार्थ रीति से बहुत आवश्यक है। तो कैसे हो हमारा ये अंत समय, अंतिम समय भी जिसके वशीभूत था, जो मृत्यु को भी जो वश में कर रखा था, जिसमें या इच्छा मृत्यु का जिसे वरदान था, कौन था वो? भीष्म पितामह। तो इसीलिए हम सबको भी ऐसा ही, हम अपनी इच्छा से शरीर त्यागे, ऐसा ना हो कोई परिस्थिति के वश हो के, कोई अर्थक्वेक आ गया, कोई भूचाल के साथ कोई फ्लड आ गया, सुनामी आ गई, उसके वशीभूत होके अगर हमने शरीर छोड़ा तो हमने और दुनिया में अंतर ही क्या रहा। अपनी इच्छा से शरीर छोड़े तो वो कैसे हो, जिससे कि जब अंत समय हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हाँ, जैसा भी बहन जी परिचय में बता रहे थे, ब्रह्मा बाबा के साथ रहने का, लगभग छह सात वर्ष ब्रह्मा बाबा के 1962 में ज्ञान में आए, और सबसे बड़ा सौभाग्य तो ये मिला कि 69 में 18 जनवरी 1969 को जब बाबा ने शरीर छोड़ा तो उस समय हम बाबा के सम्मुख ही थे, मधुबन में थे, और अपनी अंतिम अपनी आंखों से ही हमने देखा बाबा की कर्मातीत अवस्था, और कैसे बाबा प्रकृति जीत भी बने। और प्रकृति जीत का भाव, बस ये जो हमारे शरीर है, प्रकृति जीत, उससे आत्मा ऐसे छुट्टी ले जैसे कि मक्खन से बाल की तरह है, और बस उसी स्थिति को हमें भी प्राप्त करना है। तो हमने क्या देखा, हम वैसे उस समय बहुत दूर आसाम में पोस्टेड थे, तो 17 जनवरी की सुबह यहाँ पर आ गए अपने लौकिक पिताजी के साथ, और 17 और 18 जनवरी को यहाँ पर मधुबन में बाबा के पास ही थे, पांडव भवन। तब तो एक पांडव भवन ही होता था, और बाबा की अंतिम स्थिति को देखा, किस प्रकार से बाबा ने अपना सारा दिनचर्या रही बाबा की, और वो प्रकृति जीत बने। तो उसमें प्रकृति जीत यदि हम सब भी बनना चाहते हैं, तो पहली बात तो ये प्रकृति हमारा अंत तक साथ दे। ये जो शरीर है पांच तत्वों का बना हुआ, भले बहुत परीक्षाएं आएंगी, पुराने हिसाब किताब चुकते होंगे, रोग और आदि व्याधि उपाधि कई प्रकार की समस्याएं आएंगी, लेकिन इस पर हम विजय प्राप्त करें वो कैसे होगा, ये पांच तत्व तो हमारा अंतिम समय तक भी पूरा साथ दें। इसके लिए ये जो तत्व तो हैं, इन तत्वों को हमें अपना मित्र बनाना पड़ेगा, दोस्त बनाना पड़ेगा, क्योंकि मित्र जो है मित्र की रक्षा करता है, मित्र मित्र के कभी प्राण नहीं लेता, उसे तकलीफ नहीं देता, बल्कि उसकी रक्षा करता है समय पर। तो ये इन पांच तत्वों को अगर हमने अपना मित्र बना लिया होगा, तो ये पांच तत्व, बाबा ने कहा है ना, अंत में विश्व भर में परिवर्तन होगा, लेकिन भारत में विशेष परिवर्तन किस आधार पर होगा, प्राकृतिक आपदाओं के द्वारा। मुख्य रीति से आप सबने बाबा की जीवन कहानी तो पढ़ी है, तो एक तो एटॉमिक वीपन्स के द्वारा, अणु युद्ध के द्वारा पूरे विश्व भर में परिवर्तन आएगा, विनाशकारी परिस्थितियां पैदा होंगी। दूसरा नेचुरल कैलेमिटीज के द्वारा, प्राकृतिक आपदाएं, अर्थक्वेक, भूचाल, सुनामी, बाढ़, सूखा और क्लाउड बर्स्ट, बादल फटना आदि आदि, ये सारी समस्याएं अधिकतर ये भारत में होंगी। और तीसरा गृह युद्ध, जिसमें अलग अलग कम्युनिटी, अलग अलग धर्म वाले, संप्रदाय वाले सब आपस में लड़ मर कर खत्म हो जाएंगे। जैसा हम सब ने सुना है, अधिकतर तो जो यंग हैं बहुत कम होंगे जिन्होंने भारत पाकिस्तान जब बना था और 1947 स्वतंत्रता का, तो जब भारत विभाजित हुआ तो बहुत खून खराबा हुआ, ऐसा हम सब ने सुना हुआ है। तो इसलिए ऐसी परिस्थिति में प्रकृति के साथ हम मित्रता बनाए रखते हुए कैसे प्रकृति का पूरा सहयोग प्राप्त करें, ये बात जाननी और आवश्यक है। तो ये जो पांच तत्व हैं, बाबा को हमने देखा, वही पहले बता दें कि ब्रह्मा बाबा को हम जब 17 और 18 जनवरी को बाबा से मिले तो देखा, बस बाबा की तो बहुत कर्मातीत अवस्था के लगभग बिल्कुल निकट थे, और बाबा ने जो उस समय हम बाबा के सम्मुख जब जाते थे, हमेशा बाबा से मिलना होता था, जब से ज्ञान में आए थे 62-63 से, तब से 69 तक कई बार बाबा से मिलना हुआ। बाबा हालचाल पूछते थे, हम लोग भी बयान करते थे, सेवा ये है, पर्सनल पुरुषार्थ ऐसा है, और अब ये करना चाहते हैं आदि आदि। अब बाबा उसका उत्तर देते थे, मार्ग प्रदर्शना देते थे, समाधान करते थे। लेकिन अंतिम समय तक देखा, 17-18 जनवरी को जब भी बाबा से मिले, जितनी बार भी मिले, बस बाबा के सम्मुख जाते थे, बाबा ने दृष्टि दी थोड़ा, अब बाबा दृष्टि देके कहते थे, बच्चे अच्छा ये पूछने आए हो, अच्छा ऐसा कर लो, ऐसा हो जाएगा। यानी हमें एक अक्षर भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी, और बाबा मन की बात जान करके उसका समाधान भी कर देते थे। ये तो है मन जीते जगत जीत का लक्षण, एक लक्षण। ये हम सबको भी ऐसी स्थिति को प्राप्त करना है, क्योंकि अंत समय तक बाहर की परिस्थितियां ऐसी हो जाएंगी कि बाहर की और कोई सेवा नहीं होंगी, लोग बहुत बहुत आकांक्षाएं रख करके आएंगे हमारे पास, जैसे अभी दादियों के पास, बड़े वरिष्ठ भाई बहनों के पास आते हैं, और वो अपनी मनोकामना की सिद्धि अनुभव करते हैं, बस संतुष्टि का अनुभव। ऐसे ही अंत समय में हम सभी के सामने अनेक लोग आएंगे, बात करने का भी मौका नहीं होगा। लेकिन ऐसे समय में अगर हमने अपना मन संकल्प जीते हुए होंगे, तो हम दूसरे के संकल्पों को भी यथारत रीति पढ़ सकते हैं और उनका समाधान कर सकते हैं। तो इसीलिए एक तो ये स्थिति जो बाबा की देखी, वो दो दिन में ये 5-6 बार अनुभव किया ऐसा, कि बस बाबा के पास गए, कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं, और बाबा ने उसका समाधान किया। और साथ ही साथ ये कब होगा स्थिति, जब हमने चारों तरफ से वाइंड अप किया हुआ होगा। अगर हमारी बुद्धि बिजनेस में, बच्चों में, परिवार में, संबंधियों में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत भी अटकी हुई होगी, तो अंत समय वो ही याद आएगा, और तब ये मन जीते जगत जीत की स्थिति उतनी नहीं बन पाएगी। और जब ये नहीं बन पाएगी तो दूसरों के मन का भी हाल हम नहीं जान सकते, और जब दूसरे के मन में क्या प्रश्न चल रहा है वो नहीं जान सकते, तो उसका समाधान भी नहीं कर सकते, उसका यथार्थ उत्तर भी नहीं दे सकते। तो इस कारण से ये जरूरी है, एक तो कि हम सेवा अंत तक, जैसे ब्रह्मा बाबा ने अंत तक सेवा की, हमने देखा 18 जनवरी की सुबह बाबा क्लास में आए, और बस उस दिन बाबा ने योग ही कराया, उस दिन मुरली नहीं चलाई, पूरा योग कराया, उसके बाद बाबा याद प्यार देके चले गए। फिर बाबा ने जो भी पेंडिंग काम थोड़े बहुत रहे थे, वैसे तो बाबा सब कुछ समेट चुके थे, और लेकिन जो भी थोड़ा बहुत जो नक्की लेक के पास म्यूजियम है, वो बिल्डिंग लेने की बात चल रही थी सेवा के लिए, तो वो भी बाबा ने उस दिन क्लियर करा। जो भी पत्रों के उत्तर देने थे बाबा को, तो बाबा ने ईशु दादी को बुला के बोला, आओ बच्ची आज जितने भी पत्र हों सबके उत्तर लिखवा लो। तो बस वो बाबा ने सबके उत्तर लिखे, नहीं तो अगर किसी का उत्तर बाकी रह जाता तो उसको मन में संकल्प चलता, देखो मुझे उत्तर भी बाबा का नहीं मिला और बाबा चले गए। तो इसीलिए बाबा ने उस दिन सबके उत्तर भी लिख दिए। और रोज रात्रि क्लास होती है 9, वहां पर मधुबन में 9:30 से शुरू होती है, जैसे यहाँ पर होती है ऐसी वहां पर होती है। लेकिन उस दिन बाबा ने 6:30 बजे ही बुला के भाई को बोला कि आज बाबा जल्दी क्लास कराएगा, सबको अनाउंस कर दो, 7 बजे भोजन करके क्लास में आ जाए। ये बाबा ने खास बोला सबको कि भोजन करके आ जाए, क्योंकि बाबा को तो मालूम था अंतिम कर्मातीत स्थिति हो गई थी कि बस अब ये बच्चों से अंतिम मिलन है और उसके बाद तो बाबा छुट्टी ले लेगा। तो सब लोग भोजन करके आ गए और बाबा भी आए क्लास में और बाबा ने पूरा मुरली चलाई। तो बस ऐसी मुरली, वैसे बाबा की उम्र भी 93 ईयर थी, सर्दी का मौसम था, बाबा को कई बार बीच बीच में खांसी भी आती थी, लेकिन उस अंतिम मुरली में हमने देखा एक बार भी न बाबा को खांसी आई, न कोई गला साफ करने की जरूरत पड़ी और इतना फ्लॉलेस मुरली चली ही कि वो इस बात का प्रतीक है कि जब आत्मा कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर लेती है तो कर्म भोग के ऊपर योग बल विजय प्राप्त कर लेता है।
I'm not afraid।
तो बात हो रही थी 18 जनवरी की अंतिम दिन की साकार बाबा के साथ की। तो बाबा ने सारे पत्र के उत्तर भी लिखे, साथ ही साथ क्लास में आए, लेकिन उस दिन बाबा को जरा भी कोई भी किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं हुई, खांसी भी नहीं आई, और जो शरीर के जैसे ना बिल्कुल कर्म भोग के ऊपर जैसे योग बल ने संपूर्ण रीति से विजय प्राप्त कर ली थी। तो ये स्थिति अंत में हम सबको भी प्राप्त करनी है, क्योंकि हम, बाबा ने कहा बच्चे ब्रह्मचारी तो बन गए, अब क्या बनना है? ब्रह्माचारी, यानी कि ब्रह्मा के कदम पे कदम रखते हुए उसी स्टेज को प्राप्त करना है जिस स्टेज को ब्रह्मा बाबा ने प्राप्त किया। तो इसलिए ये अंत तक हमारे भी जब सब कर्म भोग का हिसाब किताब चुक्त हो जाएगा तो आत्मा जैसे संपूर्ण कर्मातीत बनके इस शरीर से छुट्टी लेगी, विदा ले, ऐसा हमारा प्रयास होना चाहिए। अगर संपूर्ण कर्मातीत अवस्था को प्राप्त किए बिना अगर शरीर छोड़ा तो बाबा ने बताया फिर तो इसी दुनिया में ही फिर से जन्म लेना पड़ेगा। तो अभी ये आवश्यकता है कि एक तो हमारा ये पुरुषार्थ हो अंत तक, और बाबा को देखा कि बस, बाबा को पहले आभास हो गया था जैसे, क्योंकि सारे दिन भर की दिनचर्या पूरे बाबा ने ऐसा सेट की, बचे हुए जो दो चार पेंडिंग काम थे वो भी निपटा लिए, और बस क्लास भी बाबा ने प्रीपोन्ड कर ली, और 8 बजे तक तो जैसे क्लास पूरी भी हो गई लगभग 8:15 तक, और सब बस बाबा ऐसे हिस्ट्री हॉल, जिन्होंने भी देखा होगा, आप लोग पांडव भवन तो गए होंगे पहले, देखा ही है। तो बस क्लास पूरी करके बाबा बाहर तक आए, और बस वहां आके बाबा ने कहा अच्छा बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदा लेता है। ये बाबा ने अक्षर पहले कभी ऐसे अक्षर नहीं बोले, विदा लेता है, छुट्टी लेता है, और बस बच्चों को निहारते हुए दृष्टि देते हुए बाबा अपने कमरे में गए, और फिर वहां पर बाबा ने जैसे देह त्याग किया दादी प्रकाशमणि जी के हाथ में हाथ, और नैन मुलाकात करते हुए अपनी सारी शक्तियों को विल करते हुए जैसे बाबा ने छुट्टी दी। लेकिन उसके बाद वंडर देखा, यहाँ तक तो बाबा ने जैसे पूरा मन जीते जगत जीत का पूरा परिचय दिया, लेकिन बाबा का शरीर 18 जनवरी को बाबा ने रात्रि देह त्याग किया, उस दिन पूरी रात शरीर रखा रहा, 19 का सारा दिन, 19 की रात, 20 का सारा दिन, 20 की रात, और 21 को भी दोपहर के बाद बाबा का संस्कार किया गया, 21 के बाद। लेकिन बाबा का शरीर बिल्कुल वैसा ही चमकता रहा, कोई इंजेक्शन नहीं दिया गया था उस टाइम, तो ऐसा कोई वो भी नहीं था सिस्टम, कोई इंजेक्शन नहीं दिया गया, कोई लोशन नहीं लगाया गया, केमिकल लोशन, लेकिन शरीर बिल्कुल भी डिसइंटीग्रेट नहीं हुआ, काला नहीं पड़ा, कोई उसमें दुर्गंध नहीं आई, बिल्कुल वैसे ही लगता था जैसे बाबा सोए हुए हैं और अब बाबा फिर से उठ के बात करेंगे, मुरली चलाएंगे, और जैसे बाबा कहते थे बच्चों को, कोई भी बच्चे आते थे मिलते थे ऐसे हाथ फैलाओ, बच्चे आओ, मीठे बच्चे आओ प्यारे, तो लगता था बस बाबा जैसे लेटे हुए और अभी हमेशा की तरह बाबा हम बच्चों को बुलाएंगे। तो ये शरीर बिल्कुल भी कोई ऐसा काला नहीं पड़ा, दुर्गंध, ये कुछ नहीं, ये है प्रकृति जीत का लक्षण। तो प्रकृति 5 तत्वों से बने हुए शरीर को भी बाबा ने कितने तक, इतना लगभग 65 घंटे तक रखा रहा, लेकिन बिल्कुल वैसा ही चमकता हुआ और वैसा ही शरीर। तो हम बच्चे भी प्रकृति जीत कैसे बने, तो उसके लिए एक तो ये है कि जो प्रकृति के जो 5 तत्व हैं उनसे हम मित्रता करते चले। कैसे मित्रता करेंगे? मित्रता उनके बीच में होती है जिनके संस्कार एक जैसे होते हैं। दोस्त दोस्त जैसे होते हैं, अक्सर देखेंगे आप जिनके संस्कार काफी मिलते हैं उनमें ही घनिष्ठता होती है मित्रता की। तो इन तत्वों के साथ हमारी मित्रता का भाव यही है कि जो तत्व के अंदर गुण हैं, शक्तियां हैं, उनको हम अपने अंदर धारण करते चले। बाबा ने कहा भारत में परिवर्तन तो विशेष इन तत्वों की हलचल से होगा। तो मानो जल है, है? जल तत्व का कौन सा विशेष गुण है? शीतलता, और भी है एडजस्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी। जैसे जल तत्व है, हाँ, इसे गिलास में लो, गिलास में सेट हो गया। कटोरी में लो, कटोरी में आ जाएगा। थाली में लो, थाली में हो जाएगा। चम्मच में लो, हर जगह सेट हो सकता है। ये फ्लेक्सिबल है, एडजस्टेबल। ऐसे ही अगर हम में भी एडजस्ट होने की शक्ति होगी हर परिस्थिति में, हर व्यक्ति के साथ हम एडजस्ट होके अगर चल सकेंगे, तो जैसे कि हमने जल का ये विशेष गुण धारण कर लिया, एक जल में ये विशेष शक्ति होती है। और जल में क्या शक्ति होती है? जल शीतलता, जैसे बताया आप लोगों ने, तो शीतलता। तो ऐसे ही हमारा स्वभाव भी इतना शीतल हो, निर्मल हो, कि बस कोई व्यक्ति कैसा भी गर्म स्वभाव का कोई भी आए, लेकिन हम अपनी शीतलता बरकरार रखते चले। जल शुद्ध होता है, साफ होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। नीचे कोई बर्तन में चीज भी पड़ी होगी, ऊपर से देखेंगे बिल्कुल साफ, ट्रांसपेरेंसी होती है जल में। ऐसे ही हमारा जीवन भी ट्रांसपेरेंट हो, ऐसा नहीं अंदर कुछ और बाहर कुछ और, ऐसा नहीं। हरेक कोई, जैसे गांधी जी ने कहा था ना, मेरा जीवन एक खुली किताब है। हमने बाबा का भी देखा, दादियों का भी देखा, बस खुली किताब है जीवन। तो इसी तरीके से हमारा जीवन भी एक खुली किताब की तरह हो, और हरेक तभी व्यक्तियों के मन में अंदर से उस व्यक्ति के लिए आदर होता है, जिसकी मॉरल अथॉरिटी होती है उसके प्रति अंदर का सम्मान होता है। ये और जल का गुण होता है। और क्या होता है? देखो, जब सुबह सोकर के उठते हैं, आलस भी हो, नींद आ रहे हो, लेकिन जाके आंख पे पानी डाल लेंगे, मुंह धो लेंगे, फ्रेश हो जाते हैं, और फ्रेश होके फिर योग वगैरह करें, बहुत अच्छा योग भी लगता है। तो ऐसे ही जल में फ्रेशनेस लाने की ताकत है, ताजगी लाने की ताकत है। तो ऐसे ही हमारा भी ऐसा ही स्वभाव संस्कार हो। हर आत्मा अगर कोई निराश है जीवन से, नीरस है और दुखी है, उसको हम फ्रेशनेस ला दें जीवन में, नई ताजगी भर दें, उमंग उल्लास भर दें, खुशी से उसे भर दें। तो अगर हम में ये गुण आ जाता है, इसका मतलब हमने जल जैसे गुण धारण कर लिए। और जल में क्या गुण है? देखो, जल जो है हमेशा आगे बढ़ता रहता है। उसके सामने बड़ा पत्थर भी आ जाएगा, कोई रुकावट भी आएगी, तो भी वो अपना रास्ता बना के आगे बढ़ता रहेगा, रुक नहीं जाएगा, पत्थर के हटने का इंतजार नहीं करेगा, बढ़ता रहेगा। ऐसे ही हमारे मन में भी ऐसा ही अंदर हमारा पुरुषार्थ हो कि जीवन में उतार चढ़ाव तो स्वाभाविक है, आते ही हैं। रुकावटें आएंगी, परीक्षा आएंगी, प्रॉब्लम, समस्याएं आएंगी, लेकिन वो हमारे आगे बढ़ने की गति को रोक ना दे, हम आगे बढ़ते रहे जल की तरह। ऐसी और भी सोचोगे आप, और भी कई गुण जल के मिलेंगे। देखो, संस्कार भी पुराने खत्म होते होते समय लगता है, तो अधिकतर ये कहते क्या करें, आवेश आ जाता है, रोष है, क्रोध आ जाता है। जैसे गर्म पानी में भी क्या गुण होता है? आग पर रखेंगे गर्म हो जाएगा बॉइल, लेकिन अब सिंपली आग से उतार के रख देंगे अपने आप ही अपनी ओरिजिनल अवस्था में आ जाएगा। शीतल करने के लिए और कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता, अपने आप ही ओरिजिनल स्थिति में। ऐसे ही मानो पुराने स्वभाव संस्कार के वशीभूत कभी या परिस्थिति ऐसी आ गई, क्रोध आ गया, तो वो क्रोध उस परिस्थिति से हम अपने को थोड़ा सा डिटैच कर लें, अलग कर लें। अग्नि से जैसे जल को थोड़ा अलग कर दिया डिटैच, वो अपने आप शीतल हो जाएगा। ऐसी क्रोध वाली परिस्थिति से भी अपने को थोड़ा अलग कर लेंगे, धीरे 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 जो आत्मा का ओरिजिनल गुण है शीतलता, वो आ जाएगा और क्रोध अग्नि से जैसे दूर हो जाएगा। तो ये जो जल के गुण है, ये अगर हमने अपने में धारण कर लिए तो क्या हो गया, जैसे जल को हमने अपना मित्र बना लिया, और जितनी भी कोई सुनामी आए, बाढ़ आए, फ्लड आए, कुछ भी आए, लेकिन वो हमारे मृत्यु का या दुख अशांति का कारण नहीं बन सकती, क्योंकि जल को हमने मित्र बना लिया और जल हमें पहले ही पूर्व सूचना जैसे दे देगा, हमारे पांव ऑटोमेटिकली उधर बढ़ेंगे जहां सेफ्टी होगी, जहां हमारा बाल बांका भी नहीं हो सकता। तो ये है जल की आपदा से बचने का साधन। खाली जल का ही नहीं है, दूसरा और पृथ्वी तत्व है। हाँ, देखो भारत में तो बाबा ने भी बताया, विश्व में भी जब भूचाल आता है तो देखो क्या स्थिति हो जाती है, देखते ही देखते देखते ही कितना महाविनाश हो जाता है, कुछ सेकंड में कुछ मिनटों में एकदम बिल्डिंग के बड़े से बड़े बिल्डिंग भी गिर जाते हैं। तो अर्थक्वेक, भूचाल, ये सब हमारा बाल बांका न कर सके, नुकसान न कर सके, उसके लिए क्या आवश्यक है, हम पृथ्वी जैसे गुण भी अपने अंदर धारण कर लें और पृथ्वी तत्व के साथ मित्रता कर लें। क्या मुख्य गुण है पृथ्वी का, क्या है धरती का गुण, समाने का, सहनशीलता का, वेरी राइट, बहुत ठीक है। लेकिन एक और सबसे बड़ा गुण है पृथ्वी का, दातापन का। पृथ्वी हमेशा देती है, पृथ्वी में एक बीज डालो पेड़ उगाएगा, पूरा हजारों बीज पैदा हो जाएंगे। पृथ्वी से ही पानी मिलता है, पेट्रोल मिलता है, पृथ्वी से ही सब्जी मिलती है, अनाज मिलता है, फल फूल मिलते हैं, सब कुछ पृथ्वी से मिलती है, पृथ्वी दाता है। ऐसे हम भी अगर अपना दातापन का गुण धारण कर लेंगे, हमारे दर पर कोई भी आए वो खाली हाथ न जाए। जैसे मधुबन में भी ये करा हुआ है ना कि भाई कोई आता है तो यहाँ भी गिफ्ट मिलती है, खाली हाथ यहाँ से नहीं जाता, वो तो स्थूल यादगार है। हम लोग कोई भी स्थूल चीजों की तो लिमिटेशन है कि वो याद, स्थूल चीजें तो कोई उसकी सामर्थ्य के अनुसार ही, पैसा है, कपड़ा है, अनाज है, या कोई भी चीज का दान, वो तो हर एक की परिस्थिति पर निर्भर है। लेकिन किसी के प्रति शुभ भावना रखना, शुभकामना रखना, उसे सद्भावना रखना, उसको सहयोग देना, ये सारी बातें तो इसमें तो पैसे की आवश्यकता नहीं, तो ये तो हम किसी को भी दे सकते हैं ना, मुख से मीठे बोल, सुखकारी बोल, जो कुछ ये चीजें हैं, इन चीजों में तो हम दाता बन जाए। बस कोई भी हमारे सम्मुख आए, कुछ ना कुछ ज्ञान की बातें, योग की बातें, मधुरता की, स्नेह की, सहयोग की, ये सब ले करके जाए, खाली हाथ ना जाए। तो ये दातापन का अगर गुण हो गया हमारे में पृथ्वी में, दूसरा और गुण भी है सहनशीलता का। पृथ्वी अचल है, जहां तक जब तक बहुत रेयरली अर्थक्वेक आया, लेकिन ज्यादातर अचल, अडल है। ऐसे हमारे अंदर भी ना जो है वो ऐसी निर्भीकता हो, अचल अडोलपना हो, तो अगर ये गुण धारण कर लिया पृथ्वी का तो क्या होगा, चाहे जितने भी अर्थ को एकाएंगे, भूचाल होगा, जमीन हिलेगी, लेकिन हमारा बाल बांका नहीं हो सकता, क्योंकि समय से पहले ही बस इंडिकेशन मिल जाएगी और ऑटोमेटिकली हमारे पांव सेफ्टी की तरफ चले जाएंगे। सोचना नहीं पड़ेगा, लेकिन खुद ही हमें उसका सेफ्टी का आभास हो जाएगा। तो इसलिए अगर अर्थक्वेक से बचना चाहते हैं या उसमें सफलता पूर्वक निकलना चाहते हैं तो ये आवश्यक है पृथ्वी के गुण धारण करें। देखो पृथ्वी का तीसरा और कौन सा तत्व है? हवा, वायु। देखो पृथ्वी में गुण है हर चीज को नीचे खींचती है, और वायु का गुण है हर चीज को ऊपर उड़ाती है। वायु हल्की होती है, लेकिन फिर भी जहां जहां पृथ्वी वहां वहां वायु, दोनों में विपरीत गुण है लेकिन सह अस्तित्व है, को एग्जिस्टेंस है। विपरीत गुण है, एक नीचे खींचता है एक ऊपर उठाता है, लेकिन साथ साथ ऐसे ही हमें रहना तो अपने परिवार में है, मित्र संबंधियों के साथ कार्य ऑफिस में काम करने वालों, विपरीत गुण भी हो लेकिन विपरीत होते हुए भी सह अस्तित्व, सदा सहयोग की भावना। जहां जहां पृथ्वी वहां वहां वायु, तो एक ये गुण हम जरूर धारण कर ले कि वायु की तरह, पृथ्वी की तरह जहां ये हो अचला डोलपने का और दातापन का गुण, वहां वायु की तरह हमारा कौन सा गुण होने चाहिए? वायु एक तो हल्की होती है, तो कोई भी विपरीत परिस्थिति भी आ जाए, कोई ऐसी समस्या आ जाए, हम भारी ना हो जाए। अक्सर करके कभी एकदम ऐसी परीक्षा आ जाती है किसी निकट के मित्र संबंधी की मृत्यु का या कोई भी बात, तो बड़ा मनुष्य भारी हो जाता है। लेकिन नहीं, हल्के रहे, उड़ते रहे, उड़ते रहो और उड़ाते रहो, गीत है ना। तो एक वायु का ये गुण होता है, और वायु का क्या गुण होता है? वायु में देखो अपना, वायु को हम स्टोर नहीं कर सकते, जल को स्टोर, कोई भी चीज को हम संग्रह कर सकते हैं लेकिन वायु को थोड़ी अपरिग्रह। तो बस इसी तरीके से हमारी भी जब प्रवृत्ति ऐसी होगी, बस आए दाता बन के देते जाओ। संग्रह करने की जो प्रवृत्ति है वो ही मनुष्य के एक दुख का कारण है। तो इस कारण से संग्रह नहीं होगा तो वायु हमेशा देखो शुद्ध रहती है। वायु का अपना कोई दुर्गंध सुगंध नहीं होती, लेकिन वायु जिस परिस्थिति से पास होती है वैसा रूप धारण कर लेती है। दुर्गंध से पास होगी तो वो वायु में भी दुर्गंध आ जाएगी, सुगंधी से पास होगी सुगंधित वायु हो जाएगी। तो इसीलिए वायु जो है ना, वो हमारे अंदर भी किसी भी व्यक्ति के लिए बाइसिंग ना हो, पूर्वाग्रह ना हो, ये तो ऐसा ही है, बदल नहीं सकता, इतने साल से ये कर रहे हैं, देख रहे हैं, कुछ भी, कोई भी पूर्वा, हम खुद न्यूट्रल जैसे रहे। हर आत्मा के प्रति जो बाबा ने बताया है, न तो अति लगाओ झुकाओ, न ही कोई घृणा और ईर्ष्या आदि, न तो निगेटिविटी और न ही किसी के गुण और उनके वश में हो जाना, वो भी बाबा ने कहा एक प्रकार का वो भी अवगुण है। हाँ, गुणों से उसके सेवा ले, लेकिन उनके प्रभाव में ना आ जाए। प्रभाव तो एक बाबा का, बाप दादा का ही हो। तो ये वायु की तरह, वायु ये हमें हल्का रहना सिखाती है, और अगर इस तरह हम हल्का रहना और इन गुणों को धारण कर लिया तो क्या होगा? कभी भी साइक्लोन आया, बवंडर आया, बहुत तेज वायु भी चली, तूफान आया, लेकिन वो वायु हमारी दुख अशांति का, मृत्यु का कारण नहीं बन सकती। क्यों? क्योंकि वायु का गुण हमने धारण कर लिया, वायु को मित्र बना लिया, और मित्र कभी भी मित्र के प्राण नहीं लेता, मदद करता है। तो ये प्रकृति जीत बनने का। और कौन सा तत्व है चौथा? एक सूर्य, अग्नि तत्व। गर्मी सूर्य से मिलती है ना, एनर्जी, सूर्य में क्या विशेषता होती है, अग्नि में क्या विशेषता होती है। अग्नि में जो चीज डालो उसका रूप बदल जाता है, रंग रूप सब बदल जाता है। ऐसी बाबा ने कहा आप बच्चों का भी अब अग्नि स्वरूप होना चाहिए, वॉल्केनिक योग, ज्वालामुखी योग का ऐसा अभ्यास हो कि जो भी आपके सम्मुख आए उसका रूप बदल जाए। और बाबा ने कहा भी ऐसा समय आएगा, बहुत लोग आएंगे आपके सम्मुख, बस वो रोती हुई आत्मा आए उसका रूप बदल जाए, हंसती हुई चली जाए। अशांत आत्मा आए आपका स्वरूप देख करके शांति के सागर में लहराती हुई चली जाए। तो ऐसा परिवर्तन करने की क्षमता हमें ये योग के द्वारा आएगी। और इसीलिए वो योग कब रहेगा, देखो सूरज के सामने खड़े हो जाओ, आपका मुंह सूरज की तरफ होगा तो छाया जो है वो पीछे पड़ेगी, और अगर आपकी पीठ हो गई सूरज की तरफ तो छाया आगे आगे चलेगी। तो ये ज्ञान सूर्य बाबा की तरफ, अगर हमारा जो बाबा कहता है सदा योग लगा रहे तो बाबा की तरफ मुख रहा तो माया यानी छाया, कमी कमजोरियां वो सब हमारी पीछे छूट जाएंगी, वो हमें गाइड नहीं करेंगी जीवन में, हमारे सामने नहीं होंगी, पीछे छूट जाएंगे, जैसे ये पिछले जन्म की बात है। लेकिन अगर बाबा से की तरफ पीठ हो जाती है, बाबा को भूल जाते हैं और ऐसी बात आ जाती है कि ज्ञान से उतना हमारा संबंध संपर्क कुछ कम हो जाता है पीठ, तो हमारी कमी कमजोरियां जो छाया है वो आगे गाइड करती हुई चलती रहती है। तो इसलिए ये ध्यान रखना है अग्नि की तरह हमारा वॉल्केनिक योग रहे, ज्वालामुखी योग, और उससे क्या होगा जीवन में सदा सफलता प्राप्त करते रहेंगे। और अंतिम पांचवा तत्व है आकाश तत्व। आकाश की क्या विशेषता है, बहुत विशाल है आकाश। हाँ, और विशालता जिसमें होती है, हमारा भी हृदय इतना विशाल हो आकाश की तरह, विशाल में सब चीज बहुत बेहद की नजर आती है। ऊपर से कोई चीज देखेंगे तो नीचे बहुत छोटी नजर आएगी। ऐसी कोई समस्या भी आती है जीवन में, प्रॉब्लम, अगर हमारी स्थिति ऊंची होगी आकाश की तरह तो वो समस्या बहुत छोटी नजर आएगी। उस समस्या को हम यूं ही बस खेलते खेलते ही पार कर लेंगे, सफल हो जाएंगे। तो आकाश में विशालता है, तो हृदय की विशालता किस बात से प्रदर्शित होती है, क्षमा भाव से। अच्छे के साथ तो सभी अच्छे रहते हैं, लेकिन कोई बुरा हो उसके साथ अच्छे होकर चलना ब्यूटी तो ये है। इसीलिए किसी के भी गुण के अलावा अवगुणों को हम कोई भी कभी भी स्थान न दे हृदय में, और अवगुण देखते भी हैं उसे क्षमा करते चले। क्षमा करो और क्षमा मांग लो, जीत है इसमें हार नहीं। क्षमा वीरों का भूषण है, कायर का व्यवहार नहीं। जो कायर होगा ना वो कभी क्षमा नहीं कर पाएगा। किसी भी पुराने दुश्मन को या पुराने किसी ऐसे व्यक्ति को जिससे हमारे संस्कार नहीं मिलते, देखेंगे तो बस बदले की भावना, उसे मजा चखाने की भावना, कोई ऐसी बात आ जाएगी कि जब हमारी भी समय आएगा तो हम भी इसे देख लेंगे, ऐसा कह देते ना। तो ये विशालता नहीं है, क्षमा करके आगे बढ़ते चले जाएं, क्योंकि अंत समय में वो ही याद आते हैं, या तो जिनसे बहुत स्नेह होता है प्यार होता है, या जिनके प्रति कटुता होती है बहुत, ऐसे ही व्यक्ति याद आते हैं, तो हमारा तो अंत मति सुगति हमेशा के लिए खराब हो जाएगा। अंत में ऐसे ही व्यक्ति याद आ गए तो इसीलिए क्षमा करके आगे बढ़ते चले। इसीलिए बाबा कहते हैं ना कि ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ते बढ़ते बाबा आपको कांटों से फूल बनाने आया है। आज भी एक तपोवन में रोज गार्डन का ऐसे उद्घाटन जैसा किया, बच सबने कुछ उसके अंदर गुलाब के पौधे वगैरह लगाए। वो तो पौधे यही है कि हर एक कोई फूल को क्यों नहीं लाइक करता है। फूल खुशबू भी देता है, कोमल होता है और आकर्षित करता है, प्रेम का सूचक है, प्रतीक है। यही बस बाबा हमें कहता है ना, मैं चैतन्य फूल बनाने आया हूं। और गीता का भी यही लक्ष्य है, क्या वो इससे कि फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है। फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुराकर गम भुलाना जिंदगी है। जीत कर तुम खुश हुए तो क्या हुआ, हार कर भी मुस्कुराना जिंदगी है जीवन में। यही बाबा के ज्ञान का भी लक्ष्य है। जीवन में हार जीत, दुख सुख, मान अपमान, निंदा स्तुति, हानि लाभ गीता में भी कहा है, लेकिन हमारे ज्ञान में प्रैक्टिकल उसके सबूत है। तो ये सब आएंगे, लेकिन हमारी अवस्था एक रस रहे जीवन में, और वो तभी रहेगा ये प्रकृति के ऊपर अगर हमारी विजय लगातार होती रही। और अक्सर करके हम इस बात से भटक जाते हैं, चाहते तो हम सभी है कर्मातीत बनना, लेकिन कहीं ना कहीं मार्ग में साइड सीन देख करके हमारा मार्ग थोड़ा सा कठिन प्रतीत होने लगता है। क्यों? क्योंकि साइड सीन के आकर्षण में हम फंस जाते हैं। हमारा इंट्रोस्पेक्शन उतना नहीं होता, अंदर झांकना। क्यों? क्योंकि हम दूसरों को देखते रहते हैं, बस अपने को नहीं देखते, अपनी गलती भी हमें दिखती नहीं, दूसरों को देखते रहते हैं, और वो ही हमें प्रकृति जीत माया जीत बनने में विघ्न डालती है। जिंदगी भर, हाँ कहा है किसी ने कि जिंदगी भर हम एक ही भूल करते रहे। कौन सी भूल करते हैं? जिंदगी भर एक ही भूल करते रहे, धूल चेहरे पर थी आईना साफ करते रहे। आईना होता है ना शीशा, हमारे चेहरे पर कमी हम में होती है, लेकिन हम अपनी कमी को नहीं देख पाते, दूसरे को ब्लेम करते हैं। देखा उसने ऐसी बात कही तो मुझे क्रोध आ गया, उसने ये किया तो मैंने ये उत्तर दिया। ऐसा नहीं, दूसरे को हम ब्लेम ना करें, हम अपने अंदर देख के। बाबा कहता है हम बदलेंगे जग बदलेगा, लेकिन हम दूसरे को बदलने का पहले प्रयास करते हैं तो न हम बदल पाते हैं न दूसरे बदल पाते हैं। तो आवश्यकता भी इस बात की है कि ये प्रकृति जीत बनने का भी जो बाबा ने लक्ष्य दिया है, तो माया जीत मन जीते के साथ साथ हम प्रकृति जीत भी बनते चलें और अंत समय का आवाहन करते चलें, तो अंत समय का हमें आभास भी हो जाएगा और उसको हम सफलतापूर्वक अंतिम क्षण को नजदीक ला सकें। ओम शांति, ओम शांति।